श्रील रामानुजाचार्य की। तो आज सभी आप जानते हैं कि श्रील रामानुजाचार्य के आविर्भाव तिथि है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रतिष्ठाता, श्री संप्रदाय के आचार्य के रूप में माने जाते हैं। जैसे ही पद्म पुराण में ये वर्णन की गई कि संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्थे निष्फला मता, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः, श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णव खिति पावनः। चत्वारस्ते कलौ भव्य उत्कले पुरुषोत्तमे रामानुजम श्री स्वीकार्य माधवाचार्य चतुर्मुखः श्री विष्णु स्वामीनाम रुद्रौ निम्बादित्य चतुर्सनः। पद्म पुराण में वर्णन की गई कि संप्रदाय, किसी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से मंत्र दीक्षा लिए बिना कोई भगवान हरि व भगवान विष्णु को प्रसन्न करना संभव नहीं है। किसी प्रामाणिक आचार्य की शरणागत होकर कृष्ण भक्ति की व विष्णु भक्ति की प्रारंभ की जाती है। इसलिए कली युग में विशेष रूप में वैष्णव धर्म को कैसे पालन किया जाए, खिति पाव अर्थात विश्व के बौद्ध जीवों को कैसे उद्धार होंगे, उसके लिए चिंतन करते हुए भगवान ने विशेष रूप में चार वैष्णव परंपरा की ही सृष्टि की है। श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक कुमार संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय इस कली युग में सारे बौद्ध जीव को उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसमें श्री अर्थात लक्ष्मी जी ने अपने संप्रदाय के आचार्य के रूप में रामानुजाचार्य को स्वीकार किया है। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने अपने संप्रदाय के आचार्य के रूप में श्री माधवाचार्य को स्वीकार किए हैं। विष्णु स्वामी व रुद्र अर्थात शंकर जी के द्वारा विष्णु स्वामी आचार्य के रूप में मान्य है। निम्बादित्य व निम्बार का आचार्य चतुर्सन अर्थात चारों कुमारों के द्वारा आचार्य के रूप में समर्थित है। लेकिन कहते चारों संप्रदाय चतुरास्ते कलौ भव्य उत्कले पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल, जो कि उत्कल ओडिशा में है, श्री पुरी धाम, ये चारों संप्रदाय की मुख्य प्रचार ऑफिस वहीं बनेगा। ये चारों संप्रदाय अंत में एकत्रित होकर वहीं से प्रचार कार्य प्रारंभ करेंगे। कलिजुग के आराध्य देव श्री जगन्नाथ जी हैं और कलिजुग के धाम है श्री क्षेत्र पुरी। इसलिए युग धर्म हरे कृष्ण मंत्र को प्रवर्तन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु जो श्री कृष्ण है, तो उन्होंने वहां पर रहकर 18 साल युग धर्म को प्रचार की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चारों संप्रदाय की जो आचार्य में से आज श्री संप्रदाय के आचार्य से रामानुज आचार्य की आविर्भाव तिथि है। भगवान कभी स्वयं धर्म को संस्थापन करने के लिए स्वयं आविर्भाव होते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुदाम्यहम्। कभी कभी भगवान ने स्वयं किसी विशेष व्यक्ति को भेजते हैं, अपने स्वयं पार्षद को, सो पार्षद को इस संसार में भेजते हैं उस कार्य को संपादन करने के लिए। इसलिए जो आचार्य होते हैं कोई साधारण जीव नहीं होता, हम जैसे बद्धात्मा नहीं होते हैं, और नित्य सिद्ध जीवात्मा है जो कि भगवान के निर्देशन में है। नित्य धाम वैकुंठ जगत से ही धरा पर पधारते हैं भगवत इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसी प्रकार श्री रामानुज आचार्य को उनके संप्रदाय में शेष अर्थात अनंत शेष व लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। कौन? राम अनुज, उनके नाम से ही आप जान सकते हैं। राम अनुज, अनुज का अर्थात छोटे भाई। राम के जो अनुज है लक्ष्मण, वही स्वयं अनंत शेष भगवान, वही रामानुज के रूप में धरा पर पधारे थे। ऐसा ही श्री संप्रदाय के मतामत जो अवलंबी है वैसे ही विश्वास करते हैं। चैत्राद्रंग संभव विष्णु दर्शन स्थापन उत्सुकम तुंडीर मंडले शेष मूर्ति रामानुजंग भजे। जो दक्षिणात्य के द्रविड़ देश में विशेष रूप में रामानुज के आविर्भाव हुए थे, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तुंडीर मंडल ऐसे कहते हैं, तुंडीर देश है दक्षिण भारत को, द्राविड देश भी कहते हैं। तो विशेष रूप में ये रामानुज आचार्य की आविर्भाव चैत्राद्यंग संभवम, चैत्र महीना के प्रारंभ में चैत्र महीना की प्रारंभ से चैत्र महीना की 12 चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि चैत्र महीना की 12 दिन उसने 12वां दिन में इनके आविर्भाव हुआ था। लगभग 1017 ख्रिस्टाब्द, यदि ख्रिस्टाब्द ख्रिस्टियन वर्ष के रूप में मानोगे तो 1017 ख्रिस्टाब्द, सकेरा के रूप में यदि कहोगे तो 939 शकाब्द, जो कि कलिजुग की प्रारंभ होकर कलिजुग की प्रारंभ हुआ भगवान के अंतर्ध्यान होने के प्रांत है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा से अंतर्ध्यान हो गए, कृष्ण सुधाम उपगत धर्म ज्ञानादि भी सभी धर्म ज्ञान को लेकर अंतर्ध्यान हो गए, तभी उसी दिन से कली इस धरा पर पदार्पण किया। कली का लगभग 4117 साल बीत जाने के बाद 4118 साल में ही रामानुजाचार्य के आविर्भाव हुआ, इन्होंने धरा पर आविर्भाव हुए विशेष रूप में धर्म संस्थापन करने के लिए। भगवान जैसे आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभव जुगे जुगे, उसी प्रकार उनकी महान भक्त भी इस धरा पर आचार्य के रूप में पधारते हैं उसी धर्म को संस्थापन करने के लिए। तो इसलिए रामानुजाचार्य की आविर्भाव हुआ। ये मद्रास के लगभग 30 किलोमीटर मद्रास से जो कि दक्षिण पश्चिम दिग से मद्रास से श्री पेरुम्बुदूर एक स्थान है जहां पर इनको महाभूतपुरी भी कहते, जहां पर रामानुजाचार्य की जन्म हुआ था। पिताजी नाम था सर्वक्रतु आसुरी केशवाचार्य, माता थे कांतिमती। ये सर्वक्रतु के नाम इनकी विशेष उपाधि इनको प्राप्त हुआ था क्योंकि ये यज्ञ करने में बड़े एक्सपर्ट थे, ये जदुर्वेदी ब्राह्मण थे, यज्ञ आदि कार्य संपादन करने में बहुत प्रवीण थे। कहीं भी यज्ञ होता था लोग इनको आते थे माने मुख्य जज माने पुरोहित बनाकर। लेकिन दुख की बात कि इनकी कोई संतान नहीं था इनके केशवाचार्य के, और उनकी पति ने उनकी पत्नी भी कांतिमती। तो इसलिए दोनों संकल्प लिया कि आज भी मद्रास में वो मंदिर है ट्रिपिक्लान एरिया में, उसके मंदिर के नाम श्री पार्थसारथी, भगवान आज भी वहां पर विराजमान है, प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। कहते कि वो स्वयं प्रकटित विग्रह है, वो विग्रह माने सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटी। लेकिन वो विशेष उस विग्रह में विशेषता है कि आप कहीं पर कृष्ण के विग्रह में मूछ नहीं देखोगे, वहां जाओगे तो देखोगे बहुत बहुत अच्छे मूछ है, किनके भगवान के विग्रह में मूछ बनाया हुआ है जो भी है। लेकिन वो विग्रह बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं, हजार हजार लोग बहुत दूर दूरांत से आते वहां दर्शन करने। तो उन्हीं उनको वृंदारण्य, उस एरिया को पहले वृंदारण्य कहा जाता था। तो केशवाचार्य जाकर पार्थसारथी भगवान के शरण में आते हैं और उन्हीं के निर्देशना में वो कई सालों तक यज्ञ करते रहे, एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर यज्ञ करते रहे। लेकिन कई यज्ञ के बाद जब समाप्त हुआ यज्ञ, अवभृत स्नान करने के लिए उन्होंने पवित्र जल में जाकर स्नान कर रहे थे, तो उसी दिन इनको शून्यवाणी से माध्यम से प्रतीत हुआ कि भगवान कहेगी मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में पधारूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र कामना का जो इच्छा है अवश्य पूर्ण हो जाएगा। इसलिए उन्हें आश्वस्त होकर दोनों पति पत्नी फिर अपने गांव को वापस आ गए पेरुम्बुदूर। और वहां पर आने पर ठीक एक साल के बाद समय पर चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि में रामानुजाचार्य कांतिमती की गर्भ से इस धरा पर धरा में प्रविष्ट हुए और उनके पिता माताजी ने पिताजी माताजी उनके नाम रखा क्या, रामानुज। प्रकृत में ये नाम उनको इनके माँ इनके जो मामा वो रखे, जो कि जमुनाचार्य के महान शिष्य में से सर्वप्रथम शिष्य माने जाते थे, वो थे उनके नाम था नाम्बी। वो जमुनाचार्य के महान शिष्य थे, उन्होंने अपने बहन के जो संतान उत्पन्न हुआ सुनकर वो रहते थे श्रीरंगम में जमुनाचार्य के पास में, वो पधारे और उस पुत्र के से वो शरीर ने संतान के उस पुत्र जो पुत्र संतान के शरीर में सारे महापुरुष के लक्षण देखकर महापुरुषों के शरीर में 10-12 लक्षण, विशेष 12 लक्षण होता है, और उन्होंने देखे कि इस रामानुज के शरीर में सारे लक्षण प्रकट है, तो उन्होंने समझ गए बालक कोई साधारण बद्ध जीव नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का ही अंश में है और किसी महान कार्य के लिए पधारा है। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर उन्होंने उनके नाम रामानुज रखे और उनके बहन कांतिमती को इनके विशेष रूप में देखभाल करने के उपदेश देकर फिर लौट गए। कोई की कहते कि नहीं, जमुनाचार्य ने स्वयं इनके नाम ऐसे ही रखा था, जो भी है, लेकिन इनके नाम रामानुज रखा गया। बचपन से ही इनकी जो समस्त, जैसे इनकी मेधा शक्ति, इनके सब अभूतपूर्व अति मानवीय गुण को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित होते थे। कोई भी का बात, कोई भी चीज को एक बार वो पढ़ते थे या श्रवण सुन लेते थे तो फिर इनकी टाइप हो गया और दोबारा इसको भूलते नहीं थे। इतने धी शक्ति, प्रवीण धी शक्ति था। इनके विशेष जीवन में एक महापुरुष आए, उनके नाम था कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण आप जानते हैं शूद्र थे, लेकिन भगवान वरद राजन जो कि कांचीपुरम में आज वरद राजन श्री विग्रह विराजमान है, उनकी ये मुख्य पुजारी थे उस समय, और ये महान भक्त थे। लोगों को विश्वास थे, ये सभी जानते थे कि वरद राजन स्वयं भगवान इनके साथ में बातचीत करते हैं। किनसे? कांचीपुरम के साथ में साक्षात बातचीत करते थे। यदि वो शूद्र थे, उस समय समाज में किसी शूद्र को जाकर मंदिर में भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन कांचीपुरम महान भक्त होने के कारण तो इनका पर रेस्ट्रिक्शन नहीं था। सभी जानते थे भगवान स्वयं चाहते इनको, इनसे सेवा लेना। लेकिन ये जो कांचीपुरम थे, इनकी घर था पुन्नमल्ले, जो कि पुन्नमल्ले और कांची के बीच में ही रामानुजाचार्य गांव आता था, पेरुमंदुर। इसलिए कांचीपुरम जब जाते थे प्रत्येक दिन अपने गांव में फिर चल के जाते थे कांची तक, वरदराजन की पूजा करके फिर अपने घर में वापस आते थे रात को, फिर सुबह जाते थे वहां, रात्रि में उठकर फिर जाते थे। तो इसलिए बीच में रामानुजाचार्य गांव आता था, और रामानुजाचार्य एक दिन जो छोटे बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे, रास्ते में इनको देखे, देखकर इनके स्वभाव जात जो गुण था, उन्होंने इनको साक्षात तुरंत प्रणाम किए। कोई ब्राह्मण बालक किसी शूद्र को प्रणाम नहीं करता, लेकिन ये तुरंत प्रणाम किए उनकी प्रभाव को देखकर, और उस बालक के रामानुज शरीर में सारे अष्टसात्विक विकार और उनकी महापुरुष के लक्षण को देखकर वो भी आश्चर्यचकित रह गए। कौन? कांचीपुरम। एक महाभागवत दूसरे महाभागवत को पहचानता है। तो इसे उन्होंने रामानुज इनको अपने घर में उस दिन निमंत्रण की भोजन के लिए बुलाए, साथ में लेकर आए, माता जी को कहे कि आज ये हमारे घर में अतिथि रहेंगे, इनको भोजन करा के फिर मैं भोजन करूंगा। और इनको भोजन कराए, वो भोजन करके उनको कहे कि रात्रि आप यहीं विश्राम करने का। आज रात्रि में बहुत इष्ट गोष्ठी मैंने हरि कथा उन्होंने सुने कांचीपुरम के मुख से, और उनकी पद संभावन करने के लिए पैर मैसेज करने के लिए गए हैं, तो उनको बारण किए। कौन? कांचीपुरम। कहे कि ये नहीं, आप ब्राह्मण घर में आपके जन्म हुए हैं, मैं शूद्र हूं, मेरा पैर दबाना आपका उचित नहीं है। लेकिन रामानुजाचार्य जी इसको स्वीकार नहीं किए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानुजाचार्य से शिक्षा से जो एक स्वीकार किए कि वैष्णव सेवा, वैष्णव की जाति बुद्धि नहीं होना चाहिए। वैष्णव किसी भी वर्ण, किसी जाति व किसी धर्म से होने पर भी जो वैष्णव हो गया, भगवान विष्णु के शरणागत हो गया, वो सभी वर्णाश्रम भित्ति के पर नीति के ऊपर हो जाता है। इसके लिए सब स्मार्ट नीति काम नहीं करते। इसको सबसे बचपन से ही रामानुजाचार्य प्रतिष्ठित कर दिए कांचीपुरम की सेवा करके। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, लेकिन उन्होंने उनकी सेवा करने लगे कांचीपुरम, मना करने पर रामानुज इसको सुने नहीं। तो इसी प्रकार कांचीपुरम के साथ में उनके संबंध उनके जीवन में बहुत बड़े भूमिका है। और बाद में इन्होंने जब आस्ते आस्ते बड़े हुए, 16 साल की उम्र हो गई, उनके पिताजी ने इनको शादी करा दी। उस समय बहुत कम उम्र में शादी करा जाता था। 16 साल उम्र में इनको रख्या कंबल नाम के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से उनके पिताजी ने इनको शादी करा दिए। लेकिन उनके विवाह के ठीक एक महीने के बाद उनके पिताजी के देहांत हो जाता है, नित्य लड़ा में प्रवेश कर जाते हैं। रावण जो बड़े व्याकुल होकर और देखे कि घर में माता जी है और उनकी पत्नी है और कोई घर में है नहीं, तो उनको पढ़ाई करने का अध्ययन करने का भी बहुत रुचि था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि मैं कांचीपुरम को ही ट्रांसफर कर लूं, वहां से ज्यादा दूर नहीं था कांचीपुरम, मैं कांचीपुरम में जाकर रहूं, वहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, डेली वरदराजन के भी दर्शन होगा। और उस समय एक जादव प्रख्य नाम से बहुत बड़े, जादव प्रकाश नाम से बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति कांचीपुरम में थे, जिन्होंने अपने स्कूल खोल के सबको पढ़ाते थे, तो कहे कि उनके पास से भी विद्या अध्ययन करूंगा, कोई उनको सजेशन दिया था, तो उन्होंने इसलिए कांचीपुरम घर छोड़कर पेरुमुदुर छोड़कर कांचीपुरम में आकर निवास करने लगे माता जी और पत्नी के साथ। लेकिन प्रत्येक दिन जादव प्रकाश के घर में उसके स्कूल में जाते थे पढ़ाई करने। लेकिन जादव प्रकाश जो था वो महान क्या था, मायावादी प्रचारक था, शंकराचार्य के फॉलोअर था, है? लेकिन ये तो स्वयं वैष्णव धर्म को प्रचार करने के लिए ही ये इनके आविर्भाव हुआ है, भगवान स्वयं आए। भगवान की जो लीलाओं को समझना कठिन है, जो संसार में वेदों को आश्रय करके लोग ज्यादा जीवों को हत्या करने लगे, पशुओं को काट के पशु माने बलि के नाम से माने मांसाहार के मुख्य उद्देश्य था, लेकिन जब यज्ञ में बलि देने का ये खाली रीति बनाकर मांस का माने पशुओं को हत्या करते करते खाने लगे, तभी भगवान ने फिर स्वयं बुद्ध रूप में आए और कहे कि नहीं, ये वेद पुराण सब झूठ है, जीवों को काटना नहीं, क्योंकि देखिए अयोग्य कोई ब्राह्मण नहीं है, जीवों को यज्ञ में बलि देकर इनको भगवत धाम व ऊर्ध्व गति प्राप्त कराना संभव नहीं था, ये केवल मांसाहार करने के लिए जीवों काटते थे। इसलिए भगवान ने बुद्ध रूप में कहे कि ये सब झूठा है, वेद पुराण उपनिषद सब झूठा है, इसको फॉलो मत करो। उसमें तुरंत ही ऐसी जीवहत्या को रोकने के लिए तो इसलिए भगवान ने आकर इसको रुक दिए। लेकिन बाद में फिर सोचे, अरे वेद पुराण उपनिषद झूठा कह दिया, ये तो झूठा नहीं, फिर इसको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने शंकर जी को बुलाए, शिव जी को बुलाकर बोले कि देखो मैं ऐसे करके आ गया, अभी आप जाकर फिर वेद पुराण उपनिषद को स्थापना करो। इसलिए जो शंकराचार्य है वो स्वयं शंकर जी है, स्वयं इसलिए हम शंकराचार्य को निंदा नहीं करते, वैष्णव आचार्य कोई भी सभी प्रभुपाद ने कहा कि शंकराचार्य की निंदा नहीं करना, क्योंकि वो स्वयं शंकर जी है, स्वयं वैष्णव आनंद तथा शंभु, लेकिन भगवान के आदेश से आए और आकर कहे कि देखो ये बुद्धदेव ने जो कहा कि वेद पुराण उपनिषद सब झूठा है, झूठा नहीं है, सब सच है, लेकिन बुद्धदेव के जो शिक्षा सब वेद में है, कोई नया बात नहीं कहा, बुद्धदेव ने कोई नया बात नहीं कहे, जो कहे सब वेद में है। इसलिए कहते कि मायावादं असत शास्त्रं प्रच्छन्नं बोधो उच्यते, मायावाद जो ये असत शास्त्र है वो बौद्ध प्रच्छन्नं बोधो उच्यते, बौद्ध धर्म का जो फिलोसफी उसी को प्रचार करता है, लेकिन इसका पर कहते सब कुछ वेद में है, इसलिए बड़ा और जघन्य परिस्थिति हो गया। लेकिन वेद पुराण उपनिषद को स्थापना कर दिए वहां शंकराचार्य, लेकिन वेद पुराण उपनिषद को माध्यम करके मायावाद के प्रचार किए कि तो इसलिए फिर वैष्णव धर्म को भगवान की सकारात्मक उपासना को फिर प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने फिर शेष मूर्ति को भेज स्वयं अपने पहला एक्सपेंशन शेष बा रामानुज आचार्य को भेजे। ये रामानुज आचार्य शेष जी के अवतार है, शंकर जी के आराध्य देव कौन है, शंकर जी किसको आराधना करते हैं, शंकर सन, भागवत के आधार पर शंकर जी की जो आराध्य देव हैं शंकर सन, तो शंकर सन ही विस्तार रूप में अनंत शेष के रूप में आते हैं। तो रामानुज आचार्य आए विशेष रूप में इसी वैष्णव सिद्धांत को फिर प्रतिष्ठित करने के लिए। जादव प्रख्य बहुत बड़े मायावादी था कि यहां पर कि उन्होंने इसका जो एक किताब वो लिखा था मायावाद को प्रतिष्ठित करने, जादव सूत्र के नाम से एक पुस्तक विशेष रूप में था, मायावाद सभी मायावादी लोक में बड़ा प्रसिद्ध था प्रचारकों में। लेकिन इसके पास में स्कूल में एडमिट हो गए और जाकर पढ़ने लगे, लेकिन उसका जो सिद्धांत तो देखे कि निराकार ब्रह्म को क्या कहता है, निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म, ये तो शुरू से बचपन से ही इनके वैष्णव सिद्धांत था। कांचीपुरम की संगति में रहकर उन्होंने वरदराजन के प्रति विशेष आसक्त थे, इसलिए इन्होंने कई दृष्टांत कई, लेकिन इनके स्वभाव जो था बड़े शील स्वभाव के, शांत शील स्वभाव के थे, इसलिए जादव प्रकाश उनको बड़ा प्रेम करता था और बहुत मेधा शक्ति था उनकी, एक बार सुनते तो याद हो गया, और इनकी दैन्यता नम्रता और मेधी शक्ति देखकर इनको बड़ा आदर करता था। लेकिन एक बार पढ़ाते पढ़ाते यादव प्रख्य पढ़ाते थे स्कूल में, उनके स्कूल में जाते थे, लेकिन और इनको बड़ा प्रिय शिष्य समझ कर जाकर का हमेशा पास में ही रखते थे। जब रिसेस होता था सब लोग चले जाते थे अपने घर में प्रसाद खाने के लिए, दोपहर खा के फिर आते थे। तो एक दिन सब शिष्य लोग चले गए अपने घर में भोजन करने के लिए, लेकिन रामानुज को बुला लिए यादव प्रख्य में, प्रकाश बुलाकर उनके शरीर का मैसेज कर रहे थे रामानुज आचार्य जी, उनकी बॉडी मैसेज करते थे, बैठे थे वो मैसेज कर रहे थे। उस समय एक स्टूडेंट आया, आकर प्रणाम किया यादव प्रकाश को और प्रश्न पूछा, कह के गुरु जी मेरा एक डाउट है, आपने आज जो व्याख्या किया है अपने छंदोग्य उपनिषद से, वो जो श्लोक व्याख्या किया आज कि तस्य यथा कप्यासम पुंडरिकम इव मक्षिणी, भगवान के आंख की कलर कैसे है, आंख का अंदर आंख का जो कलर है अंदर का अंश वो कैसे है ना कप्यासम है। ये कप्यासम शब्द का अर्थ मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा तभी उन्होंने व्याख्या किया कि देखो कपी कपी शब्द का अर्थ बंदर, आसम कपी आसम मीन्स उसका पिछले भाग, बंदर का जो चलता है बंदर देखे पिछले भाग उसके पिछले पुच्छ का नीचे जो भाग होता है लाल दिखता पड़ा है, लाल अंश दिखता है, लाल लाल दिखता है। भगवान के आंख का जो कलर है ऐसे ही कैसे लाल अंग कैसे ना बंदर का पिछले भाग जैसे ही है, कप्यासम का शब्द का अर्थ ऐसे ही किया। लेकिन रामानुजु के बड़ा सहन है, सहन नहीं हुआ, वो देख रहे तो बोले क्या रे स्वयं भगवान के आंख की कलर को बंदर का पिछले भाग के साथ तुलना किया गया, और कोई मिला नहीं कोई शब्द है, और कोई तुलना करने के लिए कुछ नहीं मिला। इतने दुखी हो गए कि वहां आंख से असुर टपकने लगा, और असुर टपक के सीधे जाकर गिरा उनके, वो मैसेज कर रहे थे ना उनके जंघा में गिरा, किन का जंघा में यादव प्रकाश की, तो चमक गया भरी क्योंकि बड़ा गर्म लोह था है। जो विरह में कुछ दुख के कारण आंख से अश्रु बहता तो वो गर्म होता है, हर्ष में जो आंख जो अश्रु बहेगा वो गर्म नहीं होगा, लेकिन जो कोई दुख विशेष रूप में दुखी होकर वो आंख अश्रु गर्म होता है। गिर प्रभु देखे अरे रामानुज तुम रो रहे क्यों, क्या हुआ? तो क्या हुआ नहीं बोले, आपने जो भी व्याख्या किया ये मुझे बड़ा दुख दिया। किसी लिए नहीं, ये जो कप्यासम कपि शब्द का अर्थ आप किए भगवान के आंख की कलर बंदर का पिछले भाग, ये बड़ा असह्य मेरे लिए, क्या तुम इससे भी अच्छा व्याख्या कर सकते हो ना? ये स्वयं शंकराचार्य ने किए हैं, आचार्य शंकर जी ने ये व्याख्या किए हैं, मैंने इसका केवल दोहराया शंकराचार्य की व्याख्या को। तुम सोच रहे हो अपने को शंकराचार्य की और एडवांस समझ रहे हो। रामानुज कहे गुरु जी आपकी कृपा से, गुरु कृपा से तो सब कुछ असंभव भी संभव हो सकता है। मुख भी मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम, आप जैसे सदगुरु की कृपा से सब कुछ हो सकता है। बोले ठीक है, तुम व्याख्या और कुछ व्याख्या इससे भी अच्छा व्याख्या जानते तो करके दिखाओ है। तो रामानुजन आचार्य करने की बोले ठीक है गुरु जी आपकी जैसे आदेश हुआ। तो कॉपी का शब्द का अर्थ कॉपी शब्द का उन्होंने संधि विच्छेद करके कहे कि कम जलम पीवती इति कॉपी, कॉपी किसको कहते जो जल पीता है, है? जो कौन जल पीता है, हमेशा जल को कौन सोच लेता है, सूर्य, जल को कौन पीता है, सूर्य। इसलिए कॉपी शब्द का अर्थ केवल बंदर नहीं है, कॉपी एक शब्द कॉपी शब्द का एक अर्थ है बंदर, लेकिन कॉपी शब्द का दूसरा अर्थ भी सूर्य, कहे कम जल पीवती कॉपी, और आशका मीन्स प्रस्फुटित होना, प्रफुल्लित बने होना, अर्थात सूर्य को देखकर जो प्रफुल्लित हो जाता है प्रस्फुटित हो जाता है वो कौन है, कमल। इसलिए वो उन्होंने कहे कि कप्यासम शब्द का अर्थ एक कमल पाखड़ा के अंदर भाग में जो लाली मजुक्त जैसे है कलर है, ऐसा ही भगवान की आंख भी कमल पाखड़े के समान है और उनके अंदर की जो रंग भी वो सही इसी कलर का है। तो इस व्याख्या को सुनकर तो बड़ा उसको बड़ा क्रोध आ गया, किसको बोला अरे ये तो है, ये मैंने भगवान के स्वरूप को विश्वास करने वाला है, मैंने एक व्यक्ति को भगवान को जो परम सत्य को एक व्यक्ति रूप में मानने वाला है कौन, रामानुज कहे कि ये तो बड़ा, बोले कि ठीक तुम बहुत एडवांस अपने को शंकराचार्य जी की ऐसे भी एडवांस मान रहे हो है, लेकिन तुम्हारा व्याख्या ये प्राइमरी व्याख्या नहीं है, प्राइमरी व्याख्या है जो ओरिजिनल व्याख्या प्रकृत श्लोक का व्याख्या शंकराचार्य जी ने जो किया वो सही व्याख्या है, और तुम्हारा व्याख्या सेकेंडरी है, ये तुम्हारा स्पेकुलेशन है, है? तो वो क्या करेगा बेचारे, गुरु बोले तो ठीक शांत रहे। लेकिन ऐसे थोड़ा सा फिर उसी दिन से इनका थोड़ा उनके प्रति स्नेह भाव कम गया। तो इस प्रकार कई दृष्टांत, और मैंने समय भी लिमिटेड है, कई बार ऐसे ही घटना हुआ, और एक बार उन्होंने ऐसे व्याख्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो ये तैतरीय उपनिषद से वो कहते थे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस शब्द का व्याख्या करते थे। जब ब्रह्म है परम सत्य है, परम भगवान है, वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, ऐसा ही। लेकिन रामानुजन का इसको व्याख्या दूसरे प्रकार करने लगे, बोले गुरु जी ये ठीक नहीं है, सत्य ज्ञान और अनंत ये भगवान का गुण है, है? ये भगवान के गुण है, भगवान एक व्यक्ति विशेष, अर्थात वो कहने जाते भगवान एक व्यक्ति विशेष है और भगवान का ही ये गुण सारे हैं, सत्य अनंत और ज्ञान, ये भगवान का ही, भगवान ही सर्वज सब सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान ही भगवान का ही ये गुण है कि वो सब चित आनंद, इसे भगवान का ही गुण विशेष है। ये व्याख्या सुनकर तो और गुस्सा हमारे, ये हमेशा ही भगवान को माने परम सत्य को व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है कौन, रामानुज। तो अभी वो एक दिन ये इनको बोले कि इनका सेवा बंद करें, मेरा सेवा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, है? एक दिन सारे दूसरे शिष्य को बैठा कर इष्ट गोष्ठी करके प्लान बनाया कि इसको जान से समाप्त करना पड़ेगा, किसको, ये जी की रहेगा तो ये मायावाद को समाप्त करेगा, ये मैंने फिर वो दूसरा फिलोसफी स्टार्ट करेगा, वैष्णव फिलोसफी है, तो इसको गुप्त रख के कहे कि बेटा हम लोग सब जाएंगे बनारस, वाराणसी जाएंगे, बहुत दिन से गए नहीं, काशी गंगा स्नान करे नहीं, हम लोग साउथ इंडिया में रहते, गंगा बहुत दूर है, और भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन होगा, गंगा स्नान होगा, बाद में रास्ते में तीर्थराज इलाहाबाद भी प्रयाग भी स्नान करेंगे, फिर बनारस जाएंगे, विश्वनाथ दर्शन करके आएंगे। प्लान बनाया रामानुज, गुरु बोल रहे थे क्या बोलेंगे, सब सब शिष्य लोग प्लान बना के चले, लेकिन प्लान था कि रास्ता में जंगल के अंदर इसको काट के फेंक देंगे, बस किसी को पता ही नहीं चलेगा, एकांत में गंगा फेंक दें, बस कहीं ये रहेगा तो सब समाप्त कर सब बिगाड़ देगा। तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गया, लगभग 15 दिन जाने के बाद घोर जंगल के अंदर में आ गए हैं, जंगल के जंगल में जो चले, तो एक दिन इस जो शिष्यों के बीच जो बच्चों के बीच में है रामानंद जी के मासी के लड़का गोविंद भी पढ़ता था, वो भी साथ में पढ़ते थे, इसलिए वो आए थे, लेकिन गोविंद को पता था कि ये लोग का प्लान क्या है, पता था, उन जानता था कि ये सब प्लान किए हैं उसको मर्डर करने के लिए, किसको, तो इसलिए एक दिन उन्होंने शाम के समय में, थोड़ा दिन था, हाथ पैर धोने के लिए किसी माने तालाब में गए थे, तो गोविंद ने रामानुज को बुलाकर बोला देखो देख भैया, तुम यदि अपना जीवन रखना चाहता तो भाग जाइए इनके एसोसिएशन से, नहीं तो ये लोग प्लान किए हैं कभी ना कभी तुमको मर्डर कर देंगे, ये इनका मुख्य प्लान है तीर्थ यात्रा का। बोले कि छुप जाओ कहीं जंगल में, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो प्लान किए एक दो दिन के अंदर ही जंगल के अंदर तुम काट के फेंक देंगे। तो इसलिए बेचारा क्या करेंगे, बड़े दुखी होकर, उसमें 18 साल की उम्र था, और गोविंद तो चला गया, वो दूर में जाकर जंगल के अंदर बैठे हैं, अभी क्या करें, संध्या आ गया, अंधार आ रहा, और दुखी होकर कुछ सोच नहीं पाए क्या करें, तो वहां से गोविंद वापस आया, सब लोग पूछे गोविंद रामानुज कहां है, पता नहीं मैं तो देखा नहीं, वो बोल दी, सभी लोग को भेजा चारों चारों साइड देखो कहां गए रामानुज, सब लोग चारों साइड ढूंढे और मिला ही नहीं, बहुत जोर से चिल्ला बुलाए, रामानुज उत्तर नहीं दे रहे थे, जानते थे कि ये लोग फिर मुझे पकड़ लेंगे। अंत में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा है कि हम लोग इसको मर्डर करना चाहते, तो अभी जंगल का शेर ना कुछ ना कुछ जंगली पशु इसको खा गया होगा, हो गया उसका मृत्यु, सोचकर वो शांत हो गए। और बाहर से गोविंद उसका रिलेटिव है, ऊपर से थोड़ा रोना शुरू, रो रहा कि फिर उसका थोड़ा गंगा जी में जाकर पानी फानी चढ़ा दिए, बोले ठीक हो गए। लेकिन रामानुज बड़े दुखी होकर वहां से भागे, भागते भागते जंगल के मार्ग में कुछ दूर पर 1 घंटे ऐसे ही भागते भागते क्लांत होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आस्ते आस्ते निद्रा आ गए तो सो गए, पूरे क्लांत था पूरा शरीर, जो जग रहे थे सुबह देखे कि उनके सामने 2 व्यक्ति खड़े थे, एक बहुत लंबा 7 फुट लंबा होगा, एक काले रंग की व्यक्ति है और आंख उसके लाल लाल दिख रहे, पूरे शिकारी जैसे, जंगल के शिकारी जैसे, और उसके पत्नी साथ में भी थी, दोनों देखे, लेकिन उनकी मुख का जो दृश्य था कि बड़े दयालु, बड़े यदि वो उन्होंने शिकारी जैसे दिखाई पड़ते थे, लेकिन रामानंद को देखकर बड़े दयाभाव को प्रदर्शन करते थे। माताजी ने पूछी कि उनकी पत्नी ने शिकारी का, बेटा तुम अकेले कैसे हो जंगल में, लग रहा है कि तुम कहीं मार्ग भूल गए हो, कहाँ रहते हो, क्या सब कुछ पूछे, जिज्ञासा की, उन्होंने बताया कि मैं कांचीपुरम में रहता हूँ और ऐसे ही तीर्थ यात्रा में आए थे, रास्ता मार्ग भूल गए, तो वो डिटेल तो इनको उनके पास बोलने का इसको इनको उचित नहीं था, लेकिन इन्होंने भी बात में बोले कि ठीक है, अच्छा हुआ हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, हम भी कांचीपुरम होकर रामेश्वर जाएंगे, और आप ये क्या साथी मिल गया हमारे साथ में, चलो कोई भय नहीं। लेकिन इनको तो थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर भी देखे कि उनकी इतनी भरा और इनकी करुणा की भावना को देखकर रामानुज उनके ऊपर विश्वास कर लिए, तो चले साथ में। दूसरे एक दिन चले शाम के समय, जो माता जी कह रहे थे मुझे बहुत प्यास लग रही है, उनके जो जो उनके पति कह रहे थे नहीं कल सुबह पानी पिलाऊंगी, आज नहीं, आज चलो यहीं पर ये नदी के किनारे बहुत विशाल नदी देख रहे थे, कावेरी नदी ही था, और इस किनारे हम लोग आज विश्राम करते हैं, कल सुबह तुमको पानी पिलाएंगे, बहुत अच्छा सुंदर सुशीतल जल तुमको पिलाया जाएगा। एक कहकर उन्होंने आग जलाई, आग के एक साइड में पति पत्नी सो गए, दूसरे साइड में रामानुज बोले कि सो वहां रेस्ट करो, मतलब कुछ पत्ता पत्ता डाल दिए जंगल के तोड़ के और उसे बिस्तर बना दिए, बस सो गए। रामानुज सोए, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग गए, और एक याद था कि माता जी को प्यास है, उन्होंने पास पास में ढूंढ के देखे कि कुआं है, विशाल साल वृक्ष के पास में, तो उन्होंने कुआं के अंदर देखी स्टेप्स बना हुआ, नीचे गए अपने मुख धोए स्वयं पानी पिए और हाथ धो के फिर माता जी के लिए पानी लेकर ऊपर आए। एक बार माता जी ने इनके हाथ से पानी पी, दूसरी बार पी, तीसरी बार पी, फिर भी उसकी जो तृषा उसकी मिटते नहीं थी। चौथे बार पानी लेकर आए तो देखे कि अंतर्ध्यान हो गए, कौन वो दोनों पति पत्नी जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, चारों साइड देखे कि बहुत कोई चारों साइड ढूंढे कुछ मिले नहीं, देखे कि उस मार्ग में एक व्यक्ति जा रहा है, तो उसको पूछे कि ये कहां पर है, जाके देखे लोग भी आसपास में सब बिल्डिंग देख रहा है, ये घर है कौन सा जगह है, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम कहां से आ गए, तुम तो इसी यहीं के रहने वाले हो, मैं तुमको कई बार देखा जादव प्रकाश के स्कूल में, तो कांचीपुरम है प्रसिद्ध तीर्थनगरी है, पुण्य नगरी कांची कांचीपुरम है। तो उनको ध्यान में आया, उन्हें अच्छा ये तो वही कुह है जिस कुआं की पानी से वरदराजन के अभिषेक किया जाती है, तो इसने समझ गया कि भगवान लक्ष्मी नारायण नहीं स्वयं है ये शिकारी शिकारणी के वेश में आकर मुझे इस जंगल से उद्धार किए, जिस रास्ते को हम 15 दिन चले थे आज एक दिन में पहुंच गए इधर आके। तो इसलिए रामानुजाचार्य की भगवान के प्रति और विशेष विश्वास बहुत बढ़ गए। बहुत समय रोते रोते फिर आंख से प्रेमाश्रु बहाते हुए भगवान को स्तुति करते हुए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, बहुत स्तुतियां से गाते हुए अपने घर में गए। माताजी के पास पहुंचे, माताजी देखकर बड़ा खुश हो गई, कांतिमती इतने जल्दी मेरा बेटा कैसा आ गया, तो तीर्थ के लिए गए थे एक महीना लगभग 2 महीना लगना था इनको आना जाना, तो बोले माताजी के पास में थोड़ा गुप्त में बात कह के फिर उनको शांत कराए। और इसी प्रकार कुछ दिन के बाद जादव तक भी रामानुजाचार्य अपने एक स्कूल खुल के उसमें से पढ़ाना शुरुआत किए, एक किताब भी लिखने लगे, जो किताब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस श्लोक का व्याख्या करके बहुत सुंदर पुस्तक लिखे, वो पुस्तक बड़ा आस्ते आस्ते सब जगह प्रचार होने लगा, वहां जमुनाचार्य के पास में भी जाकर श्रीरंगनाथ में भी पहुंच गए, तो इसलिए बड़े उनकी ख्याति भी बढ़ने लगा। यहाँ जादव प्रख्या वापस आया, सोच के आके तो खुश थे कि रामानुज तो खत्म हो गया, रामानुज वो खबर देने जा रहा था, लेकिन देखिए रामानुज तो अपने बारे में बैठे हुए और आश्चर्यचकित हो गए। देखिए सब बात समझ गए कि वहां से अपने अकेले ही फिर वापस आ गए इधर हैं किसी भी रूप में, लेकिन अपने गुप्त भावना को छुपाकर जादव प्रकाश बड़ा फिर रामानुज को प्रणाम ने रामानुज को प्रणाम स्वीकार किया। रामानुज तो बड़े दैन्य भाव को प्रकट कर रहे थे, बड़े नम्र थे, कहे कि आओ दोबारा मेरे स्कूल में आओ पढ़ेंगे, फिर साथ में बैठ के मेरे साथ में बैठकर शास्त्र आलोचना करेंगे, आ जाओ हमारे स्कूल में। रामानुज आने लगे लेकिन फिर तीसरी बार नहीं, इसके बीच में और एक घटना हुआ, कांचीपुरम के जो राजा थे तो उनकी कन्या के ऊपर एक भूत सवार हो गई, प्रेत सवार हो गई, तो उत्पटांग बात करती थी, रात मैंने सोती नहीं थी, रात दिन बड़े बड़ा करते चिल्लाती थी, प्रेत सवार हो गई थे शरीर में। और जादव प्रकाश का बहुत नाम था, ये भूत प्रेत को भी छोड़ाता था, कुछ कड़ा जादू तंत्र मंत्र भी जानता था, तो इसको राजा उसको इन्वाइट किए, किसको, जादव प्रकाश को। जादव प्रकाश आते ही वो प्रेत ने उसको देखकर बहुत जोर से हंसने लगा, बहुत हाँ बोला कि तू आ गया मुझे से हंस नहीं करेगा, तेरा मंत्र कोई काम नहीं करने वाला है, तुम जितने शक्तिशाली है जितना उससे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, पूर्व जन्म में मैं सारे वेद पुराण उपनिषद सब जानता था, तुमसे तुम्हारे जितना नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है, तुम्हारा मंत्र कुछ काम करने वाला नहीं है, बड़े भाग जाओ यहां से। लेकिन ज्यादातर कैसे सुना नहीं, वो बहुत कुछ मंत्र झाड़ते हुए फूकते हुआ, लेकिन वो तो जोर जोर से हंसने लगा। कौन? प्रतापमा उसके शरीर में सवार हुआ। बाद में बोला, देखो मैं कैसे शरीर से जाऊंगा, उपाय मैं खुद ही बताता हूं। तुम ऐसा ही करने से मैं नहीं जाने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारा जो शिष्य है, सबसे छोटा शिष्य जो है कौन, रामानुज, इसको बुलाओ। वो आकर यदि अपने चरण को मेरे सिर में धारण करेगा, उसकी चरण धूली मेरे सिर में पड़ेगा, तो मैं छुल के चले जाऊं, तुम्हारे बात में नहीं जाने वाला हूं। तो राजा ने बात को सुना, तुरंत भला बोला, बोलो कौन है, कौन है? बोला के ले रामानुज बोला के ले। और वो उससे जो राजकन्या श्वेत पन्नी बैठी थी, तो रामानुज जैसे कहे तो चरण उनके सिर पर रखे, चरण स्पर्श करते हुए ही शांत हो गया। प्रेत ने बड़ा दम्रते बोले, मैं जी धन्य धन्य हो गई हूं और आपके चरण धूल प्राप्त किया हूं, अभी मैं चले जा, ये शरीर को छोड़कर चले जा रहा हूं, ये राजकन्या के शरीर को मेरे प्रभाव से मुक्त कर देता हूं। रामानुज गई, कुछ लक्षण सूचित करके जाओ, कि ठीक है, देखो ये जो पीपल का वृक्ष है, इसकी अग्रभाग को तोड़कर, तो मैंने अग्रभाग अभी तुरंत ही मैं जो शरीर त्यागूंगा तो उसके वृक्ष के अग्रभाग तोड़ जाएगा, है अग्रभाग ऐसे तोड़ते तुरंत ही एक घुन्नी बाबा जैसे आकर वहां वृक्ष का अग्रभाग तोड़ के नीचे गिर गया। और तुरंत राजकन्या भी चारों जैसे सोया हुआ व्यक्ति जैसे जग जाता है, उठकर देख रहे चार साइड, लज्जित होकर मुकुट का कवर करके फिर भाग गई वहां से, अपने कमरे में चले गए। तो राजा ने बड़े प्रसन्न हुए, जादव प्रकाश को बड़ा अपमान हुआ। ले अरे ये तो हर जगह में मेरा आगे आ जाता है, ये कौन रामानुज, और क्या करेगा बेचारा। फिर वो बुलाया था तो स्कूल में जाते थे, लेकिन तीसरी बार फिर सर्वम खड़ू इदम ब्रह्म फेर शब्द जो व्याख्या करने लगे रामानुज, अपने हिसाब से वैष्णव व्याख्या करने लगे, इसको सारा मैं अभी व्याख्या करने समय नहीं है। तो उसे उसी समय वो बोला, आज काल से और नहीं आना मेरे स्कूल में, तुम अपना स्कूल खोल के फिर पढ़ाओ, इतने पंडित है तो मेरे व्याख्या जी तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम अपना स्कूल खोलो। रामानुज बोले, ठीक है गुरु जी जैसे हो आपकी इच्छा, नम्रता से प्रणाम करके चले गए। रामानुज अपने स्कूल खुलकर फिर वैष्णव सिद्धांत को पढ़ाने लगे हैं। इसके बीच में कई कथा है, लेकिन मुख्य रूप में जमुनाचार्य फिर इनको अपने एक शिष्य को भेजे महापुरुषों की, तुम जाक। बीच में जमुनाचार्य एक बार आए थे कांचीपुरम में, और उन्होंने रामानुज को देखे हैं जादव प्रकाश के साथ, बड़े दुखी हुए, जानते थे कि यही रामानुज है, इनको देखते ही महापुरुष लक्षण सारे शरीर में देखते ही जमुनाचार्य ने सोचे थे कि यही ही ये श्री संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय को समझने भविष्य में संभालने में यही योग्य व्यक्ति है, लेकिन उनको कैसे संपर्क स्थापना करेंगे, वो देखे कि जादव प्रकाश के साथ में है। तो एक दिन उन्होंने श्रीरंगम से महापुर ने उनके एक शिष्य को भेजे कि जाकर रामानुज को मेरे पास किसी भी उपाय से मेरे पास लेके आओ। उसमें उनके बड़े बीमार थे जमुनाचार्य। महापुर ने आकर कांचीपुरम ने वरदराजन के दर्शन किए, कांचीपुरम जो उनको सारे एक बात कहे। उस समय रामानुज की यह सेवा मिला था, प्रत्येक दिन एक गगरे पानी लेकर वरदराजन के अभिषेक के लिए देते थे, और सुबह सुबह जब आए इन्होंने तो जाकर वरदराज के मंदिर में रात्रि को विश्राम किए थे महापुर ने। सुबह सुबह रामानुज आए और पानी लेकर जब वरदराजन के पास दिए, तभी कांचीपुर ने बोले कि यही है रामानुज, आप इनसे बात कर लो स्वयं, मैं तो सेवा में भगवान की सेवा विलंब हो रहा, मैं सेवा में जा रहा हूं। तभी महापुर ने अपने जो इच्छा को व्यक्त किए, बोले कि मैं जमुनाचार्य की शिष्य हूं, जमुनाचार्य आपको दर्शन करना चाहते, आपको बुलाए हैं उनके पास में, अभी बड़े अस्वस्थ हैं, लेकिन आपके प्रति उनके स्वाभाविक आकर्षण है, विशेष रूप में आपको देखना चाहते हैं। रामानुज भी आकर्षित थे जमुनाचार्य जी के बारे में, बहुत कुछ सुने थे, उनके स्तोत्र रत्न उन्होंने जो 100 श्लोक लिखे थे भगवान की ग्लोरिफिकेशन करके उसको पढ़े थे रामानुज, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ मैं भी तो कई दिनों से उन महान वैष्णव आचार्य जी को दर्शन करना चाहता हूं। बोले चलो फिर चलिए। बोले हाँ अभी विलंब नहीं, वो घर में भी नहीं गए, वहीं पर वहीं से निकल गए, कहां से, मंदिर से सीधे। महापुर ने बड़े आश्चर्य बोले कि आप गृहस्थ हो, घर में तो जाके पत्नी को बोलो, मां को बोल के। बोला नहीं नहीं, साधु का दर्शन करना, वैष्णव दर्शन के लिए ये सब तथाकथित लौकिक रीति ये बड़ा इंपोर्टेंट चीज नहीं है। वहीं से सीधे भागे चले गए, बिना बोले इन्फॉर्म बिना किए घर में सीधे आए। लेकिन इसके बीच में जमुनाचार्य ये पहुंचने के पहले उनकी क्या हो गया था, देहांत हो गया था, नित्रलम प्रवेश कर गए थे। रामानुज पास में आए महापुरुष के साथ में, लेकिन बहुत दुखी हुए जमुनाज, क्योंकि मन में वो उनको ही अपने गुरु रूप में स्वीकार किए थे, आध्यात्मिक गुरु रूप में, किनको, जमुनाचार्य को, रामानुज आचार्य, लेकिन आए के देखे कि दीक्षा तो नहीं लिए, लेकिन ये शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन ये मार्क कर रहे थे कि इनकी तीन अंगुली ऐसा ही क्या ऐसे बंद था। जो सारी आत्मा जो आदमी मर जाता है सारे अंगुली के होते हैं खुल जाते हैं, हाथ पूरे ऐसे हाथ पसार कर जाएगा बोल रहे हैं, हाथ पूरे खुला रहता है सब, लेकिन उसमें तीन अंगुली बंद था। किन की? सब ब्राह्मण जो आचार्य जाके मार किए, जमुना आचार्य की जो शरीर तो ऐसे जमीन पर वो तो स्वयं का जैसे करके मुद्रा में है, लेकिन ये तीन अंगुली सभी सोचे कि ये तो शरीर त्याग चुके, लेकिन तीन अंगुली ऐसा ही है। ब्राह्मण जो सोचे कि इसका कुछ विशेष अर्थ है, इसलिए उन्होंने इसको समझे कि ये महात्मा मुझे बुलाए और मेरे माध्यम से इनको कुछ सेवा का जरूरत है, कुछ सेवा चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ करूं। इसलिए भगवान द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने कहने लगे कि पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, बोले कि मैं पवित्र जल लेकर आचमन करके पूरे सत्य प्रतिज्ञा करने लगे कि मैं निश्चित रूप में ये जीवन काल के समस्त समय को वैष्णव धर्म को प्रतिष्ठित कर, वैष्णव धर्म की अनुजाई बा उनकी मार्ग को अनुसरण करूंगा, जो उन्होंने जमुनाचार्य ने जो मार्ग प्रदर्शन किया उसको मैं अनुसरण करूंगा, और इस वैष्णव धर्म को धर्म के वैष्णव सिद्धांत के आधार पर भगवान नारायण जो परम पुरुष है और उनके शरणागत होने से ही बद्ध जीव के कल्याण होगा, इस वैष्णव धर्म को मैं स्थापना करूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा। इससे कहते ही एक अंगुली खुल गया, एक अंगुली दो बंद है, तो फिर उन्होंने दूसरी बार कहे कि इसी वैष्णव सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए, सत्य और धर्म को स्थापना करने के लिए मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा, श्री भाष्य, जिसके नाम क्या होगा, श्री भाष्य की कमेंट्री लिखूंगा वेदांत सूत्र के ऊपर, जो कि सत्य और धर्म का प्रतिष्ठित करेगा। ऐसे कहने के फिर दूसरी अंगुली खुल गई। तीसरी बार फिर उन्होंने कहे कि विष्णु पुराण के रचयिता पराशर मुनि ने जो सिद्धांत प्रतिष्ठित किए, ईश्वर जीव तथा प्रकृति, ये तीनों के बारे में जो सिद्धांत किए कि भगवान ईश्वर जीव उनके दास है, दोनों सेम नहीं है, ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों सेम नहीं है, ईश्वर है और जीव उनके अंश है, जीव और ईश्वर के जो संपर्क तथा प्रकृति किस प्रकार भगवान की अध्यक्षता से कार्य करते हैं, जो सिद्धांत विष्णु पुराण में वर्णन की गई, उस सिद्धांत को मैं पुनः प्रतिष्ठा करूंगा समाज में, उसी विधावधार में प्रचार करूंगा। ये कहते हुए तीसरे खुल गया है। इसको देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए, सभी समझ गए कि यही व्यक्ति ही भविष्य में ही वैष्णव सिद्धांत का प्रचारक बनेगा, जमुनाचार्य की उत्तराधिकारी यही बनेगा। लेकिन ब्राह्मण आचार्य जब देखे कि इस स्थिति को देखकर उनके अंश अश्रु से भरपूर था, उन्होंने सब लोग रुक रहे थे कि रुकिए, बोले नहीं, मैं यहां जिनकी दर्शन करने आया था उनके दर्शन तो मुझे नहीं मिला। सब लोग बोले कि तो रंगनाथ की दर्शन करो, बोले कि नहीं, रंगनाथ जी के दर्शन करने की मेरी जरूरत नहीं है, जिस भगवान इतने निष्ठुर है कि मुझे ये महान आचार्य के दर्शन नहीं कराए, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है, तो इसलिए वो रंगनाथ जी के दर्शन भी नहीं किए, वहीं से फिर वापस आ गए कांचीपुरम। लेकिन कांचीपुरम में आकर फिर जब रहते थे, लेकिन इसके बीच में वरद राजन ने आदेश दिए कि इनको सदगुरु स्वीकार करने के लिए, तो इन्होंने एक गुरु की ढूंढ में भी थे, कौन, रामानुज, अब तक दीक्षित नहीं थे, दीक्षा वैष्णव दीक्षा नहीं लिए थे, इसलिए वरद राजन ने इनको कहे कि कांचीपुरम के माध्यम से कि ये महापूर्ण से दीक्षा ले, जमुनाचार्य के शिष्य जो महापूर्ण, इसलिए उनसे फिर दीक्षा लेते हैं। कहानी जो विशाल है लेकिन वर्णन करना संभव नहीं, तो कांचीपुर ने रामानुज ने महापूर्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया, तो फिर उनकी पत्नी, गुरु पत्नी और गुरु दोनों कांचीपुरम में थे, तो उन्होंने अपने घर के आधा घर जो उनके जो घर था उसके आधा भाग उनको रहने के लिए दिया, अपने गुरु और गुरु माता और दूसरे भाग में अपने पत्नी के साथ स्वयं रहे, कोई बच्चे नहीं थे उनके, लेकिन दोनों बड़े अपने गुरु की प्रत्येक दिन प्रत्येक सेवा करते थे, उनसे सब शास्त्र प्रत्येक दिन, यदि रामानुज महान विद्वान पंडित थे लेकिन गुरु के सामने बैठकर दैन्यता से शास्त्र सुनते थे। और लेकिन एक दिन ऐसा घटना हो गया तो उनका पत्नी तो भी यदि वो दीक्षा लिए थी लेकिन वो स्मार्त ब्राह्मण की नीति फॉलो करती थी, एक दिन रामानुज आचार्य की पत्नी रक्षा कंबल और उनकी पत्नी कौन, महापूर्ण की पत्नी, दोनों आए थे पानी उठाने के लिए, पास में कुआं था, अपने कुकिंग सेपरेट करते थे अपने घर में, पानी लेने के लिए आए थे और दोनों एक साथ में अपने उसमें बकेट था बा गगरा हो बांध के रस्सी में बांध के डाल दी और जो पानी उठा रहे थे तो रक्षा कमल का जो पानी का पात्र थोड़ा नीचे रह गया ऊपर आ गया किन का पात्र जो महापूर्ण की पात्र तो उस पात्र से दो चार बूंद पानी जाकर उसमें गिरा किसमें वो रक्षा कमल के पात्र रावण जो पत्नी के पत्नी के पात्र में तो चिल्लाने लगे क्या हो गया तू मेरा गुरु का पत्नी हो गया तो मेरा सिर में चढ़ेगा ना क्या है शूद्र का शूद्र के घर से तेरा जन्म हुई शूद्र का पत्नी है जानते नहीं मैं कुलीन ब्राह्मण घर की हूं और तुम्हारा शूद्र का पानी मेरा ब्राह्मण के मैंने ब्राह्मण के गगरे में गिर गया और ये पानी में भगवान की पूजा नहीं कर सकते कुकिंग नहीं कर सकते तो बड़े घमंड में बहुत गाली देने लगे बेचारे क्या करके पानी ऊपर उठाए उठाकर पानी गगरे तो रखकर फिर उस माफी मांगी बहुत मेरा अपराध माफ कर मना के लेकिन और दैन बड़े दैनता से अपने पानी लेकर घर घर मैंने गए लेकिन रुक कर होने लगी तो उसी समय महापूर्ण आए कर होने का कारण क्या समझ गए उन्होंने बताया कि ऐसा ही मुझे रामानुज की पत्नी मुझे ऐसे ही कहे तो महापूर्ण ने कही कि प्रकृत में ये रामानुज की पत्नी नहीं कही भगवान ने उसकी माध्यम उसको माध्यम बना काम को बोले कि ये स्थान हमारे रहने का लायक नहीं है, है? यहाँ पर ऊपर दूसरे के ऊपर निर्भर करके रहना साधु का कर्तव्य नहीं है अभी चले हम कहा श्रीरंगम रामानुज को बिना कहे आ गए श्रीरंगम रामानुज आकर घर में देखे गुरु और गुरु माता नहीं है अब उनके पत्नी पूछे पत्नी बोले कि अरे मैं ऐसे ही सुबह सुबह थोड़ा झगड़ा हो गया मैं तो ज्यादा कुछ कहा नहीं लेकिन वो ऐसा ही वैष्णव जो होते तो क्रोध को काम क्रोध को कंट्रोल कर रखते हैं आप कैसा गुरु बने लगता है कि उनको काम क्रोध का भी कंट्रोल है नहीं है तो उसको सुनकर बड़े दुखी हुए रामानुज और लेकिन उस समय एक सुबह सुबह एक भिखारी भी आई थी खाना मांगने के लिए बड़ा दुखी थी माधुकरी को खाना और प्रत्येक दिन रामानुज आचार्य को भी मैसेज करता था कह रहे व्यक्ति सुबह मैसेज करता था रामानुज कहे कि घर में कुछ राइस है तो कुछ प्रसाद दो उसको दो खाने के लिए बोले कुछ नहीं मेरे घर में थोड़ी प्रसाद सुबह सुबह कहां से प्रसाद है रामानुज स्वयं गए किचन के अंदर देखिए पूरा पात्र भरा हुआ वरना है तो पूरा पात्र लाकर दे दिए इसको खाने के लिए दूसरे दिन में रामानुज का अपने कांचीपुरम की झूठन खाना चाहते थे तो उनको एक दिन बुलाया अपने घर में निमंत्रण दिए प्रसाद के लिए और उनको कहे कि कुकिंग करना है कुकिंग करना लेकिन कांचीपुरम समझ गए थे कि रामानुज मेरा झूठन का मैंने मेरा उच्चिष्ट खाने के लिए भावना रखकर मुझे बुला रहे इसलिए उन्होंने रामानुज बुलाने के लिए जो रास्ते में गए उस रास्ते में आकर वो दूसरे मार्ग में आकर पहुंच गए रामानुज इधर इनको बुलाने आए लेकिन वो दूसरे पहले आकर कहे कि रक्षा कमल को बोले कि मुझे देव प्रसाद बनाया है ना मैं लेट नहीं लेट हो जाएगा मेरे भगवान की सेवा रामानुज नहीं है तो घर में ठीक है तो आप दे दो मैं भोजन करता हूँ रखे का मौला उसको दे दी भोजन खाए और खाने के बाद उन्होंने मैंने खाने के बाद जो फिर वो पत्ता को लेकर बाहर में खचरे कहीं फेंके और स्थान को स्वयं गोबर में गोबर पानी मिट्टी देकर सुर लिपे लिप कर फिर वो चले गए कौन कांचीपुरम वो आए तो रखे का मौला बोले रामानुज आते बोले कहा वो कांचीपुरम आए थे ना हाँ आए थे आकर भोजन करके चले गए मैं वो जगह को गोबर मिट्टी में अच्छा से लिपा दिया माटी को फिक कर उसे जो मिट्टी था उसको फिक कर लिप दिया दोबारा है सूत्र थे इसलिए उनका बोले उनके जो पात्र में जो झूठन कुछ था झूठन उसको मैं कुत्ता को खिला दिया और थोड़ी कि इसको उसे फेंक दिया बस जो बचा हुआ था पात्र में उनका जो कुकिंग उनके लिए किया गया था और जो बच गया था उसको भी मैं सूत्र को दे दिया और सब दोबारा कुकिंग कर रही थी वो बर्तन को फिर नया घस के दोबारा सफाई करके कुकिंग कर रही थी रामानुज बड़े दुखी थे बोले कि ऐसे पत्नी मेरे घर में रहेगा तो क्या होगा रामानुज दुखी होकर रामानुज आए थे कांचीपुरम को मिलने के लिए उस समय और एक ब्राह्मण गया भूखा था थोड़ा मांगने के लिए कुछ प्रसाद के लिए इसको भगा दी तुरंत गाली देकर भगा दी कौन कांतिमती ने उनकी पत्नी वापस आ रहे थे यहाँ रामानुज आते थे घर में जा रहे थे रास्ते मिल गए तो बोले कि रामानुज को बोले कि तुम्हारे घर में मैं वो बहुत क्षुधा मेरा बहुत भूखा था थोड़ा अन्न मांगने गया था तुम्हारा पत्नी मुझे इससे गाली दी तो बोले कि अच्छा अभी मैं उपाय बताता हूँ कैसे तुमको खिलाएगा रामानुज ने आचार्य कहे कि साड़ी पास में गए नया साड़ी खरीद लिए और कुछ हल्दी और कुछ मैंने कुमकुम वगैरह कुछ खरीद के मैंने स्त्रियां जो लगाते हैं तो उसको बोले कि ले जाओ इसको और झूठे पत्र के लिख दिए बेटी तुम्हारा छोटे बहन का शादी होने वाला है और ऐसे तुमको आना बहुत जरूरी है और तुम्हारा माँ बहुत थक जाती है अकेले कितना काम करेगी तुम आके थोड़ा मदद करो और वहां जाओ तुरंत और यदि तुम्हारा पति रामानुज फ्री है तो उसको भी लेके आओ साथ में ऐसा करी पत्र लेके रामानुज स्वयं दे दिए उस ब्राह्मण बोले कि पत्र इसको दे दो और तो दोबारा ब्राह्मण को देखा, अरे भाई वही ब्राह्मण फिर दोबारा बोला, नहीं नहीं मैं तो आया था आपको खाने, तुम्हारा पिताजी ने मुझे भेजा था, तुम समझे नहीं, मुझे भगा दे। देखो पत्र देखो, ये नया साड़ी है और ये तुम्हारा और कुछ अलंकार है तो इसको दिया हुआ है। तो उसको देखकर पत्र देखकर बड़ा खुश हो गया, अच्छा मेरे पिताजी ने पत्र लेकर मेरे बहन का साथ, बड़ा खुश हो गया, खुश हो गए और ब्राह्मण को बैठा कर बहुत सुंदर अच्छा खिलाए, खाओ अच्छा अच्छा मेरा पति है बैठो, अच्छा आसन दी बैठने के लिए। रावण जो भी वापस आए तो जैसे कुछ नहीं जानते तो आए, तो उन्होंने आते ही बोले देखिए देखिए मेरे पिताजी ने पत्र भेजा है और मेरे बहन का साथ दिए, मैंने जाना है आपको, चलिए। सब बोले मैं तो नहीं जा पाऊंगा, रावण जी बोले बहुत काम है, ठीक है तुम जाओ, तुम जा सकते हो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। और सब सरंजाम हो गए, अपने सब निकाल गई पिताजी के घर में, कौन पत्नी। रामानुज तुरंत ही घर त्याग कर आए और भगवान वरदराजन के पास में संपूर्ण रोते रोते चरण में गिरे, प्रभु मुझे आपके शरण में लीजिए, मैं सब त्याग कर आज आपके शरण में आया हूं, संसार में आपके बिना मेरा कोई नहीं है, काय मनोवाक्य में आपके शरणागत होने के कारण मैं आज आपको ही साक्षी रखकर और आपके सेवक कांचीपुरम को साक्षी रखकर वैराग्य आश्रम स्वीकार करता हूँ। ये कहकर स्वयं त्रिदंड बनाए, संन्यास दंड बनाए, त्रिदंड जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्वयं ये त्रिदंड लिए तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वैष्णव आचार्य राष्ट्रीय संप्रदाय आचार्य रामानुज आचार्य भी इनके कोई संन्यास गुरु को ही नहीं दिया, स्वयं त्रिदंड बनाकर साक्षी रखकर भगवान वरदराजन को और कांचीपुरम की अध्यक्षता से यज्ञ करके बस ले लिए संन्यास। संन्यास लेकर लिए तो उनके नाम जतिराज रहा, क्या नाम रहा जतिराज, उनको स्वयं भगवान वरदराज ने कांचीपुरम को कहे कि इनके नाम रखो जतिराज, ये समस्त जतियों में समस्त संत पुरुष में सम्राट के समान है, ये इनकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त होगा। तो इस प्रकार जतिराज बनकर फिर त्रिदंड धारण कर प्रचार में निकले। इसकी बात में उन्होंने सोचे कि अपने गुरु को भी दर्शन करें, आए श्रीरंगम, लेकिन महापुर ने कहे कि देखो मैं जितनी मंत्र नहीं जानता हूं, और एक विशेष व्यक्ति है गोष्ठीपूर्ण, वो भी जमुनाचार्य के शिष्य है, लेकिन वो सारे मंत्र की सब भावार्थ अर्थ सब जानते हैं, उनसे आप यदि भगवान भगवान के मंत्र प्राप्त करके ले लोगे तो और इसको जप करोगे तो आपको सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होगा, मेरा आदेश से आप उनसे जाकर फिर दोबारा मंत्र लो। तो गोष्ठीपूर्ण के पास में रामानुज गए तो बोले कि नहीं नहीं मैं दिखा नहीं देता हूं किसको, यदि भी रंगनाथ जी ने स्वयं इनको आदेश दिया कि ये रामानुज योग्य व्यक्ति है इसको आप मंत्र देना, फिर भी नहीं परीक्षा कर रहे थे। 18 बार गए उनके पास, 18 बार इनको वापस कर दिए, कौन, लेकिन नेक्स्ट टाइम 19 मुनि जब पहुंचे तो उन्होंने फिर देखे कि ये इनके दैन्यता को देखकर ये बड़े रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, कोई जीवन मेरा बेकार है, आप मैंने यदि आप जैसे महान संत से मुझे दीक्षा प्राप्त नहीं हुआ, बाप मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने गोष्ठीपूर्ण ने इनको दीक्षा दिए, अष्टाक्षर नारायण मंत्र है, ओम नमः नारायण, इसी संप्रदाय के मुख्य जप मंत्र है। तो देकर उन्होंने कहे कि इसका अर्थ भी व्याख्या करके समझाए, तो ये अर्थ का महिमा क्या है, मंत्र का महिमा, उन्होंने कहे कि इस मंत्र को यदि कोई श्रवण करेगा, इसका उच्चारण करते हुए कोई इसको श्रवण करेगा, वो समस्त कलमश से बद्धावस्था से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाएगा, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को यदि कोई मंत्र प्रदान करेगा, किसी कामी पुरुष को, कोई बद्ध जीव को यह मंत्र देगा, तो स्वयं नरक में जाएगा। लेकिन बोले पूछे गुरुजी, वो तो नरक में जाएगा जो प्रचार करेगा, लेकिन जो जो सुनेगा, कोई भी सुने तो भगवत, हाँ कोई भी यदि इस मंत्र को सुनेगा तो भगवत धाम चले जाएगा। तो बड़े आए रामानुज, आए बड़े वहां से आए आकर श्री रंगनाथ जी के मंदिर के सामने की गोपुरम जो था, आप देखें कितना वो सब बहुत बड़ा गोपुरम है, वहां से रास्ता में जिसको मिलते थे बोलो बोले सबको बोलाते थे, आज आओ, आज मैं तुमको सब बहुत कुछ विशेष एक विशेष मंत्र दूंगा, श्रवण कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप सब भगवत धाम चले जाओगे। और आकर उसके चढ़ गए, वो कोपुरम के बहुत कष्ट से उसके ऊपर एकदम टप को चले गए, वो खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगे, सब लोग सुना मैं जो बोल रहा हूं और मेरे साथ में दोहराओ, ओम नमः नारायण। ये बात तो सुनिए तो वो भागकर है, कोई लोग जाए खबर दे दिया गोष्ठीपूर्ण को, तुम्हारा क्या मत किया शिष्य में चला बनाया, वो तो मंत्र सबको पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा है। तो भाग भाग क्या है, बोले कि उतर जल्दी वहां से उतरो, उतरे से उतरे, बोले कि तुम इतने कुड़ांगार है, मैं जब पता नहीं था, बहुत गाड़ी दी, मैं तुम्हें इतना अयोग्य बने जानते, तुमको मंत्र नहीं देता, तुमको मना किया था, तुम गुरु आदेश को भी लंघन किया, तुम नरक में जाएगा, बहुत गाड़ी दी। रामानंद कहे गुरु जी, लेकिन आपने तो एक ही बात कहा कि ये मंत्र का उच्चारण का जो सुनेगा वो कहां जाएगा, अब मैं जैसे कि पतित आत्मा, एक आत्मा, एक मेरे जैसे बद्ध जीव नरक में जाएगा और ये सारे हजार हजार लोग भगवत धाम चले जाएंगे, यही मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर पूरा सभी लोग हरी वो आए, तो तभी उन्होंने आंख से अश्रु आ गया किनके गोष्ठीपूर्ण, समझ गए कि स्वयं रंगनाथ जी ने कहे थे कि ये व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं है, आचार्य के यही लक्षण होता है, वो अपने के लिए नहीं सोचते हैं, ये आचार्य भूमिका निभाने के लक्षण है कि सारा जगत को, सारे बद्ध जीव के बारे में जो चिंतन करता है। इस प्रकार रामानुज आचार्य इसके प्रांत में दिग्विजय प्रारंभ किए, उन्होंने श्रीभाष्य की रचना किया, श्रीभाष्य की रचना करने के लिए उनको बोधायन श्रुति नाम के ग्रंथ से विशेष रूप में उस ग्रंथ को प्राप्त करना जरूर था, वो ग्रंथ को मायावादी लोगों ने छुपा के रखे थे कश्मीर में शारदा पीठ में, और रामानुजाचार्य अपने शिष्य कुरेश के साथ में, जो आचार्य बने मुख्य दो शिष्य उनके सबसे पहले शिष्य बने जगदीश सर कुरेश, इनको लेकर उन्होंने गए शारदा पीठ से वो ग्रंथ को लाने के लिए, वहां जाकर मायावादी जो पूछे उनको, बोले नहीं इधर कुछ नहीं, ये ग्रंथ संत, बड़े दुखी होकर रात को विश्राम कर रहे थे लोग, शारदा देवी स्वयं सरस्वती देवी ने रामानुज को जगाए और जगाकर वो किताब दे दिए, कहे कि ये लोग तुमको देंगे नहीं लेकिन तुम एक ग्रंथ रखो, मैं जानता हूं तुम ही वैष्णव धर्म को स्थापना करोगे, ये किताब ले लो और लेकर तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुमसे छीन लेंगे। तो सरस्वती जी की कृपा हुई, तो फिर साक्षात दर्शन करके उनको प्रणाम करके नारायण भागे, रात को रात शिष्य के साथ भागे। लेकिन एक महीने के बाद में वो लोग ने एक दिन अपने लाइब्रेरी का सब अरेंज कर रहे थे किताब से ठीक से, और ढूंढते ढूंढते किताब मिला नहीं, बोले यार ये किताब कहां गया, बोले कि वही जो दो आया था ना आदमी वो भागे, वही लोग चोरी किया होगा, जब दो तीन लोग तगड़े लोग भागे फिर आकर इनको पकड़ लिया, साउथ इंडिया में घूम रहे थे पकड़े, बोले कि पूछे इनको इंडायरेक्टली किताब है के, बोले हाँ हाँ है, तुरंत इन बलात्कार से फिर छिन के ले गए। रामानुज बड़े दुखी हुए, लेकिन उनके कुरेश जो शिष्य थे इतनी बड़े बुद्धि शक्ति उनके पास था, वो एक महीने के अंदर उसको पूरा पढ़ के पूरा रख लिए थे दिमाग में, उनके गुरु जी चिंता मत कीजिए मैं सारा बताता हूँ, दोबारा लिख के आपको दे देता हूँ, बोधन से दे दी। तो कुरेश इस तरह इतने बड़े शक्ति से धी शक्ति उनके पास था। कुरेश के चरित्र में कई कहानियां वर्णन है, वो बड़े पहले बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे कुरेश, कांचीपुरम के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, प्रत्येक दिन लाखों लाखों लोगों को खिलाते थे और नक्षत्र चलाते थे, बड़े उनके पति पत्नी दोनों धार्मिक थे, रामानुज के ऊपर आश्रित थे, रामानुज के क्लास सुनते थे, बड़े बहुत मान धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन रामानुज आचार्य जब आप श्रीरंग में आकर रहने लगे दुखी हो गए, बोले यदि सत्संग से मैं वंचित हो गया हूं, ये धन संपत्ति ये क्या मेरे मिलेगा, इसलिए सारे धन संपत्ति को त्याग कर सब गरीब सब छोड़ के चले गए वहां कांचीपुरम में। वरदराजन और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने उनके लिए व्याकुल हो गए, उनको बोले कि कांचीपुरम को कि बोले उसको बोलो हमको दर्शन करने के लिए, लक्ष्मी जी ने आदेश दी कि उनको बोलाओ मेरे बरपुत्र है वो मेरे को दर्शन करें, लेकिन वो कहे कि भगवान के दर्शन या वो नहीं उनकी लक्ष्मी की सौभाग्य देवी का दर्शन गुरुचरण दर्शन से भी, यदि गुरु दर्शन गुरुचरण से मैं वंचित हुआ हूं तो ये दर्शन मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उसको तिरस्कार करते हुए आ गए थे श्रीरंगम, आकर रामानुज आचार्य के चरण में आश्रित करके दोनों उनसे दीक्षा लेकर पति पत्नी रहे, दोनों महान भक्त के रूप महान उनके चरित्र है। अरे कुरेश यहां तक कि अपने जीवन को भी दे दिए थे, एक बार जो कांचीपुरम मैंने वो कृमिकंठ जो कि चोलो साम्राज्य के अधिपति था राजा था, उन्होंने शंकर जी की भक्त था, शिव विष्णु भक्ति से शंकर जी भक्ति को ज्यादा प्रचार करता था, शंकर जी को बड़ा कहता था शिव विष्णु से, लेकिन ये विष्णु को ही प्रचार करते थे, भगवान नारायण ही श्रेष्ठ कहते थे, इसलिए उनको गुस्सा आया, बोला वो रामानुज को बोला कि लाओ इधर, रामानुज को इच्छा उसका कि रामानुज को जान से मार देगा नहीं तो उनका आंख निकाल लेगा यदि वो शंकर जी को श्रेष्ठ नहीं मानेगा। कुरेश इस बात को जानते थे, इसलिए कहे कि नहीं गुरु जी को जाना ठीक नहीं, हम गुरु को नहीं खोएंगे, इसलिए स्वयं रामानुज की रामानुज आचार्य की जदि गृहस्थ रामानुज आचार्य के संन्यास वेश धारण करके स्वयं अपने को बोला कि मैं ही रामानुज हूं, रामानुज आचार्य को छुपा के वो स्वयं गए, उनके जो राजदूत आए थे देने के लिए उनके साथ गए, और वहां जाकर सब मायावादी लोगों से जो शंकर जी प्रति सबको तो जुक्ति में तो लोग परास्त हो गए, लेकिन फिर भी राजा ने फोर्स किया कि नहीं तुमको बोलना पड़ेगा शंकर जी श्रेष्ठ है, किससे विष्णु से, वो माने नहीं, बोला कि ठीक है ईमानता नहीं है, इसको जान से नहीं मारेंगे क्योंकि बचपन जो मेरे लड़की को पहले भूत प्रत्यग्रस्त हो गया था ये मुक्त किया था इसलिए इसको माफ करें, लेकिन इसका आंख खुदाई यदि नहीं मानता तो इसका आंख निकाल लो, तो इसलिए इनको दस बारह लोग पकड़े और इनका आंख दोनों निकाल ली, अंधा हो गए। लेकिन कुरेश फिर भी अपने गुरु की सेवा के लिए, गुरु की, गुरु जी की रक्षा करने के लिए अपने आंख को भी खो दी। लेकिन वापस आए फिर रंग रंगम में, रामानुजाचार्य जी इनको बोले कि बात में कहा कहे कि आप वरद राजन के पास में जाकर अपने आंख की भिक्षा मांगो, मिल जाएगा आपको, फिर आंख मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने तीन बार गए वरद राजन के पास, लेकिन तीनों बार कहे कि ये कृमि कंठ को क्षमा कर दो, अज्ञानी है वो, क्या किया है उसको पता नहीं है। भगवान बड़े क्रोधित थे भक्त की वैष्णव अपराध किया है, लेकिन वो हमेशा जाकर उसकी क्षमा प्रार्थना करते थे। रामानुज बड़े क्रोधित थे, बोले तुम तीन बार मेरे तो गुरु आदेश को फॉलो नहीं कर रहे हो, ये गुरु का आदेश समझ कर बोलो। चौथे बार जाकर जो गुरु आदेश को पालन करी कहे तो फिर उनके आंख उनको वापस मिल गया, फिर आंख दोनों आ गए। इस प्रकार कुरेश महान भक्त थे, ऐसे रामानुज आचार्य के शिष्य लोग सब एक एक महान वैष्णव थे, चरित्र वर्णन करना संभव नहीं है। और हमारा अर्जुन हरि प्रभु सुबह बोलते थे कि उनको उनके बारे में सुनने की बड़ा इच्छा है, बोले कि आप पहले बार इंग्लिश क्लास दिए थे, आप एक के बारे में नहीं बताए, धनुर्दास के बारे में। एक शिष्य महान शिष्य भी रामानुज आचार्य के थे, धनुर्दास है? धनुर्दास एक बेसिया संगी था, एक हेमांबा नाम की एक बेसिया थी, तो उसकी प्रति आसक्त था। एक बार रंगनाथ जी के प्रोसेशन चल रहा था, विशाल कहानी है लेकिन संख्या डीपली, और रामानुज आचार्य बैठे थे तो प्रोसेशन में भगवान के चरण में बैठे थे और प्रसन्न था, लेकिन हजार हजार लोग कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कीर्तन करते हुए बहुत हजार हजार लोग नाचते थे गाते थे जा रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा था कि छत्ता छतरी पकड़ के उस बेसिया को दिखा रहे थे। बेसिया चल रही थी और उसके सामने खड़ा होकर उसकी मुखारविंद को देख रही थी। किसका मुख को देख रही थी? बेसिया को, मुखड़ा को देखते हुए छत्र दिखाते हुए, धूप था, बेसिया को छत्ता दिख रही थी और मुख को उसके पीछे 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 करके चल रही थी। पीछे से कोई गाड़ा आएगा तो वो गिर जाएगा, उसको भी वो चिंता नहीं है। इसको देखकर बड़े आश्चर्य हुए, रामानुज बोले कि ये कितनी बड़ा पतित आत्मा है, भगवान रंगनाथ जी के मुखारविंद को निहारता नहीं है, ये बेसिया का मुख को देखकर वह चल रहा है, पीछे का अपने शरीर का भी ध्यान इसको नहीं है, हैं? ये बेसिया के प्रति जैसा इसकी माने आसक्ति, ऐसे आसक्ति भगवान में हो जाएगी तो ये महान भक्त बनेगा। तो बोले कि इसको बुलाओ हमारे पास। इसको बुला के लाए तो बोला कि तुम क्यों इसकी वो तुमको शर्म नहीं लग रहा है, हजार हजार लोग के बीच में तुम एक बेसिया का मुख को देखकर ऐसे पीछे करके इसको छत्र दिखाए चला रहे हो। बोले कि आचार्य जी, ये जो बेसिया, ये जो हेमांबा का जो मुख है, ऐसे मुख, इतने सुंदर मुख तो ये संसार में किसी के, वो भी शर्म बेशरम पूरा कहा था कि इससे सुंदर मैं लगता नहीं कि और कोई ऐसा सुंदर चीज है। रामानुज कहे कि इससे भी यदि कोई सुंदर मुखड़ा तुझे दिखाऊंगा तुम इसको छोड़ दोगे, इसको देखना। बोला मेरे को तो विश्वास ही नहीं कि इससे कोई सुंदर होगा। रामानुज आचार्य कहे ठीक है, तुम आज शाम को मेरे साथ आना, हम जाएंगे रंगनाथ जी के दर्शन, शाम को भगवान के दर्शन में जाएंगे, तुमको इससे कई करोड़ गुण के अधिक सुंदर मुख दर्शन कराऊंगा। उसको विश्वास नहीं था। बोला कहे रंगनाथ जी के दर्शन करेंगे, रंगनाथ जी को तो मैं हजार बार मंदिर में गया हूं, दर्शन किया हूं, इसमें क्या होगा। लेकिन उसको आचार्य कहे तो फिर शाम को उसको दो लोग, दो तीन शिष्य से बोला के लिए आए और गया दर्शन के लिए। लेकिन आज इसे हजार बार तो पहले दर्शन किया था, लेकिन आज उसके लिए प्रार्थना किए कौन? रावणुज आचार्य स्वयं प्रार्थना किए, हे प्रभु, रंगनाथ जी को प्रार्थना किए कि ये मूर्ख जीव को, बद्ध जीव को थोड़ा सा आपकी कंदर्प कोटि कमनीय जो रूप छोटा है उससे से एक बूंद इसको दर्शन करा दीजिए, एक कण, इसकी अज्ञान तिमिर अंधकार नष्ट हो जाए, मोह आसक्ति नष्ट हो जाए। रामानुज आचार्य प्रार्थना की भगवान को, इसके बाद बोले कि अभी देखो। तो देखा, देखते तो आज देख रहा था, पहले तो देख रहा था कई बार रंगनाथ जी को, आज देख रहा था कंदर्प कोटि कमनीय कांति, उसके आंख और वहां से हटने एकदम एकांत भाव से भगवान की आंख से इसके आंख मिल गए और आंख से अश्रु की धारा टपकने लगा, नदियों के पूरा नीचे सारे मैदान पर कीचड़ हो गए, उसकी आंख और हट नहीं रहा किम से, भगवान से। आसपास में लोग थे आश्चर्यचकित रह गए, अरे इसकी इतनी भक्ति, जो वैश्य के प्रति आसक्त था आज इतने भक्ति के साथ इसके पास हो गया। रोते रोते वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा है। तो इसलिए कहते कि कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार तुम्हार सकति अच्छे, आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे। जब तक किसी महाभागवत महान वैष्णव की कृपा नहीं होता है, कोई भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। वही धनुर्दास कितनी बार देख रहा था लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन रामानुज आचार्य की कृपा हुआ तो फिर महान वैष्णव बन गया। लेकिन रामानुज आचार्य जानते थे कि फिर वो हेमाम्बा भी रामानुज आचार्य में शरण में आता है, फिर उन्हें रामानुज आचार्य दोनों को शादी करा देते हैं, फिर पति पत्नी रूप में रहते हैं, संसार के समस्त मोह उनके नष्ट हो जाता है। धनुर्दास रामानुज आचार्य वृद्ध अवस्था में भी कावेरी को स्नान करने जाते थे, उनकी जो दूसरे शिष्य था पहला शिष्य था दासरथी, दासरथी की कांध में एक हाथ रखते थे, एक हाथ धनुर्दास की कांध में रखकर आते थे, चलने के स्नान करके चलते थे। सब दूसरे शिष्य में बड़ा मैंने था कि क्या है ये धनुर्दास है कि बेसिया संगी था है कि शूद्र है, और आचार्य उसी कांध में हाथ रखकर स्नान करने के बाद शूद्र किस कांध पर हाथ रख के ऊपर आते हैं। रावण आचार्य सबके मनोभाव को समझ गए थे, लगभग इसलिए एक दिन को सिखाने के लिए कि धनुर्दास की स्थिति क्या है, तो उन्हें के अभिनय की एक दिन सभी सन्यासी लोग जो सोए हुए थे आश्रम में, रात को उठकर सबके कौपिन के थोड़ा थोड़ा फाड़ दिए, थोड़ा छोटा कर दिए, जैसे वो ठीक से कौपिन पहन नहीं सके। दूसरे सुबह उठकर तो उन्होंने सब लगने लगे कि जो कौपिन ठीक से बांधते नहीं, तो वो सब एक साथ लड़ने लगे, कौन ने कौपिन का डोरी को फाड़ दिया है, यहां से काट के ले गया है, कौन ऐसा किया, सारे सन्यासी एक दूसरे में लड़ने शुरू कर, फिर इतना झगड़ा हो गया कि तो रावण जाते स्वयं कर सोई आकर फिर उनको शांत कराए। बोले अरे तुम लोग सन्यासी लोग, सन्यासी का अर्थ गोस्वामी, बात बेगम मानस क्रोध बेगम जिहा बेगम उधर उपस्थ बेगम, ये सब कंट्रोल होना चाहिए, तुम लोग झगड़ते हो है? तो बाबा अच्छा तुम लोग जाओ, तुम्हारा स्थिति के तो धनुर्दास का बारे में आप लोग को कई लोग को डाउट है, आज मैं शाम को धनुर्दास को यहाँ पर बैठा हूँ, बैठाया कर मैं उससे कुछ बातचीत करते रहूंगा, और आप उसके घर में जाओ, उसकी पत्नी हेमाम्बा सारा शरीर में बहुत मूल्यवान अलंकार धारण करके सोते हैं और वो अपने पति की अति अपेक्षा में सोए होंगे, आप जाकर इसको अलंकार से चोरी करके लेके आओ शरीर से निकाल के, और देखो क्या रिएक्शन हो रहा है उसका, तुम्हारा एक कौपिन छिन गया था इतने। तो कुछ लोग गए आज, मैंने गुरु जी कहे तो आठ दस लोग गए, सब सन्यासी ब्रह्मचारी मिल के गए, और देखे कि दर्द तो खुला था, तो अपने पति आएगा घर में इसलिए खुला रखा था, और देख रहे थे ब्राह्मण लोग अपने वैसे ही सन्यासी, लेकिन मुख कैसे कवर करके अंदर में घुसे देख रहे थे, लेकिन समझ गए कि ब्राह्मण लोग आए हैं, ये तो हमारे गुरु भाई लोग हैं, सब तो आए हैं, जरूर कुछ का कार्य है, धन की आवश्यकता होगा, तो वो शरीर से सो एक शरीर ऐसे सोई हुई तो सारे साइड से सब अलंकार खोल लिए, निकाल लिए कान से ऐसे सब, वो कुछ जैसे नहीं जान, जो सब जानते थे लेकिन नहीं जानते जैसे ऐसे सो रहे, लेकिन देखिए एक साइड से निकाल लिया, सोचिए कि एक साइड तो निकाल लिया, दूसरे साइड भी निकालने के लिए मैं इस साइड से हो जाऊंगा तो दूसरे साइड से निकलेंगे, तो वैसे इन करवाड़ देते ही सब भाग के डर गए, अरे जग गई है भाग गए। तो इसके पास में थोड़े समय में वहां से आए कौन, धनुर्दास। धनुर्दास के बाद में ये सब कहा कि देखो ये सब ब्राह्मण लोग आए थे, सन्यासी लोग, आपके गुरु भाई लोग ने ऐसे मुख को ढंग कर ऐसे कुट में जैसे नकली डकैत बन गई, ऐसे सब आकर मेरे शरीर से निकाल लिए, एक साइड से निकाले, मैं सोचा कि दूसरे साइड से भी निकल लेना चाहिए, ऐसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऐसे मैं करावट देते ही भाग गए सब। तो धनुर्दास ने उनको बहुत डांटा, किनको, पत्नी को, तेरे मन में बड़ा अहंकार है, घमंडी है तू, फलसी को है, तो इसलिए तुम कहे क्यों ऐसा है, मैंने वो लोग को क्यों नहीं दिया, तुम ये सारे गहना भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए ले जा रहे थे, तुम इसको क्यों रखा शरीर में, और इसको बहुत गाली दे रहे थे, बोले तुमको ऐसा ही वो कोई सूचना नहीं देना था कि तुम जगे हुए हो, तुम तो ऐसा ही अभिनय करना था कि सोए हुए, जैसे भी वो निकाल ले जाते थे सारे, और पति पत्नी की जो बातचीत को सुने सब, वो छुप के भी सुनते थे, जाकर गुरु जी के पहले बोले रामानुज आचार्य के पास में, रामानुज आचार्य तो सारे सन्यासी को बुलाकर बोले कि देखो अभी तुम्हारे मानसिक स्थिति और धनुर्दास के मानसिक स्थिति, आप दोनों में एडवांस कौन है भक्ति में है? तो इस प्रकार धनुर्दास की एक महान भक्त के रूप में रामानुज आचार्य की कृपा से है प्रतिष्ठित हुए, जो कि एक समय एक बेसिया संगी थे, लेकिन गुरु कृपा से आचार्य की कृपा से धनुर्दास माने महारामानुज आचार्य की कृपा से वैष्णव से माने परमहंस स्थिति को प्राप्त किए थे। तो इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, यदि किसी महान संत की कृपा नहीं होता है तो कोई भी वैष्णव नहीं बन सकता है, वैष्णव बनने का कृपा सिद्ध है, इसे कहते हैं, केवल साधन से सब कुछ नहीं होता है, साधन के साथ साथ वैष्णव की कृपा, भक्त पद धूलि आर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल, बार बार सर्वशास्त्र फुकारिया कहे यही तीनों होते कृष्ण प्रेम भक्ति है, तीनों के माध्यम से भगवान के चरण में प्रेम भक्ति होता है, भगवान के चरण वैष्णव के चरण धूल लेकर हम सारे कर्म उनको देते हैं, वैष्णव के चरणामृत पान करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, वैष्णव के झूठन खाने से उनके पास में जो सद्गुण है, जो सारे भगवान को प्रेम करने के जो गुण है, वो सारे गुण हमारे पास में ट्रांसफर होता है। इसलिए आज जैसे महान आचार्य वैष्णव आचार्य श्री रामानुज आचार्य के चरण में हम लोग यही प्रार्थना करते कि उनकी विशेष कृपा हमें भी, एक कोण भी, एक कृपा की कणिका भी हमें भी प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्रील रामानुजाचार्य आचार्य आविर्भाव तिथि की जय। लेट हो गया।